जमानों की उमंग बाब नंबर 4। तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ। जलाल का बादशाह इस कदर हलीम हो गया कि उसने बशरियत अपना ली। उसका जमीनी गुर्दोपेश गैर मुहज्जब और करियाहुन नजर था। उसका अपना जलाल बशरियत में छुपा दिया गया था ताकि उसकी जाहिरी शक्लो सूरत दिलकशी का बायस न बने। उसने जाहिरी नुमाइश को बिल्कुल दूर रखा। दौलत, दुनियावी इज्जत तकरीम और इंसानी बड़ाई किसी रूह को मौत से बचा नहीं सकती। मसीह यीशु ने फरमाया कि कोई दुनियावी लालच या दिलकशी किसी इंसान को उसके पास ना लाने ना पाए, बल्कि अगर किसी ने उनकी पैरवी करनी है तो सिर्फ आसमानी सच्चाई के सबब उसके पीछे हो ले। मसीह यीशु की फितरत और सीरत के बारे पेशतर पेशनगोइयों में बता रखा था। इसलिए वो चाहता था कि जो कोई इंसान उसे कबूल करना चाहता है वो उसे कलाम-ए-मुकद्दस की गवाही पर कबूल करे। फरिश्ते निजात के जलाली मंसूबे पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि खुदा के बेटे को इंसानी जामे में मलबूस नस्ले आदम किस तरह कबूल करेगी। फरिश्ते चुनीदा लोगों की सरजमी में आए। दूसरी कौमें झूठे देवताओं की परस्तिश करती थीं। जिस सरजमीन में खुदा का जलाल जाहिर हुआ और जहां पेशनगोई का नूर चमका, फरिश्ते वहां आए। वो यरूशलेम में उनके पास आए जो शरीयत के मुफस्सिर थे। वो उनके पास आए जो खुदा के घर के खादिम थे। इससे पहले वो जकरिया काहन के पास आए जब वो अपनी बारी पर कहानत की खदमत अंजाम दे रहा था। अलमसीह के जल्द आने का इश्तिहार दिया जा चुका था। मसीह के आगे आगे राह तैयार करने वाला पहले ही पैदा हो चुका था। उसके आने के मुद्दा और मकसद की जांच पड़ताल मौजजे और पेशनगोई के जरिया हो चुकी थी। इसके बावजूद यरूशलेम नजात दहिंदा को खुशामदीद कहने के लिए तैयार न था। आसमानी पयंबर बड़ी हैरानगी से उन लोगों की बेएतनाई को देख रहे थे जिनको खुदा ने मुकद्दस सच्चाई दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया था। यहूदी कौम को खुदावन ने मसीह खुदावन की गवाही देने के लिए वक्फ कर रखा था और उन्हें आगाह कर रखा था कि मसीह इब्राहिम की नस्ल और दाऊद के घराने से होगा। फिर भी वो न जानते थे कि उसकी आमद बहुत करीब है। हैकल में सुबह शाम की कुर्बानी खुदा के बरे की तरफ इशारा करती थी। हैकल में भी उसे कबूल करने के लिए कोई तैयारी न थी। कौल के सरदार काहनों और रब्बियों में से कोई भी नहीं जानता था कि यहां बहुत बड़ा वाकया वकूअ में आने वाला है। वो अपनी बेमानी दुआओं को दोहराते और आदमियों को दिखाने के लिए रस्मी इबादतों को तूल देते रहे, मगर दुनिया के जाहो हशमत और धन दौलत की फिक्रों में गुम होकर मसीह खुदावंद को कबूल करने की तैयारी से गाफिल हो चुके थे। यही बेएतनाई बनी इसराइल की सरजमी में सरायत कर गई। खुदगर्ज दिलों पर उस खुशी व मुसर्रत का बिल्कुल असर ना। हवाजिस से आसमान झूम गया। बहुत कम लोग थे जो आने वाले मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए तैयार थे। उन्हीं की खातिर खुदावन ने आसमान के एलचियों को भेजा। पाक फरिश्तगान मरियम और यूसुफ के हमरा थे जब वो दाऊद के शहर नासरत का सफर कर रहे थे। रूमी हुकूमत की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि तमाम लोग अपने अपने आबाई शहरों, गांवों और कस्बों में जाकर इस्मनवीसी के लिए हाजिर हों। ये हुक्म गलील की पहाड़ियों तक भी पहुंचा। कदीम में खोरस के बारे में मशहूर था कि वो कैदियों को रहुई बख्शेगा। खुदावंद के इस मकसद की तकमील के लिए कैसर ओकोसत्तस खुदा का नुमाइंदा बना, जिसके हुक्म से मुकद्दसा मरियम को बैतुलहाम लाया गया। वो दाऊद की नस्ल से थी और लाजिम था कि इब्ने दाऊद उसके शहर में पैदा हो, क्योंकि नबी ने कह दिया था। लेकिन ए बैतुलहाम अफरता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मिजदर जमाना ए साबिक, हां कदीमुल अय्याम से है। मीका 2:5। लेकिन सद अफसोस कि अपने आबाओ अजदाद के शहर में जहां उनकी हुक्मरानी थी, मुकद्दसा मरियम और जनाब यूसुफ अजनबियों की तरह थे। वो सारा दिन थके मांदे बैतुलहाम की गलियों में मारे मारे फिरते रहे। सराय में भी उनके लिए जगह ना थी, गंदे गलीज इस्तबल में जहां चौपाए बंधे होते थे, वहां उन दोनों को रहने की जगह नसीब हुई। इसी जगह दुनिया के नजात दहिंदा ने जन्म लिया। इंसान तो इतनी बड़ी खुशखबरी से बेखबर ही थे, मगर पूरा आसमान खुशियों से झूम रहा था। आसमानी नूरी मखलूक उस धरती पर आ गई। उसकी मौजूदगी से तमाम जहां बुकाए नूर बन गया। बैतुलहाम की पहाड़ियों पर इन गिनत फरिश्ते आ जमा हुए। वो दुनिया को नजात दहिंदा की खुशखबरी सुनाने के मुंतजिर खड़े थे। अगर बनी इसराइल खुदावंद से वफादार रहते तो उनके साथ ये खुशियां बांटी जाती, लेकिन अब उनको खुदावन ने छोड़ दिया। खुदावन ने फरमाया, मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडीलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। यसैया 3:44। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। जबूर 4:112। वो तमाम जो नूर की तलाश करते हैं और जो नूर को सिद्क दिल से तस्लीम करते हैं, उन पर खुदावंद के तख्त से जरूर नूर चमकेगा। उन मैदानों में जहां बुजुर्ग दाऊद अपनी भेड़ों की निगेबानी किया करता था, उनमें अभी भी कुछ चरवा है, रात के वक्त अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे और मऊदा मसीह के बारे सोच रहे थे। बल्कि वो खुदावंद ताला से दुआ कर रहे थे कि दाऊद के तख्त पर आने वाले बादशाह को भेज। और देखो, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। लूका 8:2-11। इस जलाली रोया से सुनने वाले चरवाहों के जहन भरपूर हो गए कि बनी इसराइल के लिए नजात दहिंदा आ गया है। अब खुदावंद इसराइल को इज्जत, फतह और हुक्मरानी अता कर देगा। लेकिन इससे पहले के चरवाहे ये सब कुछ सोचें, फरिश्तों ने उन्हें ऐसी खबर दी जिसके जरिए वो अपने नजात दहिंदा को कबूल करने के लिए तैयार हो गए। लिहाजा नजात दहिंदा को पहचानने के लिए उन्हें बताया गया, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। लूका 12:2। फरिश्ता ने उनके खौफ को भांपते हुए उन्हें तसल्ली पजीर किया और फिर उनको वो खुशखबरी दी जिसको वो छुपा ना सकता था। वो मैदान चकाचौंध रोशनी से मुनव्वर हो गया। जमीन और आसमान दोनों ये गीत सुनने के लिए हमातनगोश हो गए। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। लूका 14:2। ये गीत रहती दुनिया तक कायम रहेगा, और जब रास्तबाजी का सूरज तुलू होगा, जिसके परों में शिफा होगी, तो उस गीत को सब हमारे खुदा की हम्द के लिए गाएंगे। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के से पानी की आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी के हेलिलवोया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। मुकाशवा 6:19। जब फरिश्तगान चले गए, रोशनी मुधम पड़ गई। बैतुलहम की पहाड़ियों पर रात के सन्नाटे दोबारा छा गए, लेकिन उस नजारा की झलक जो चरवाहों ने देखी थी, उनकी याददाश्त से महव न हो सकी। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतुलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हो पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। लूका 15:2-20। आसमानी मखलूक से मिलकर आज भी जमीनी मखलूक घबराहट और परेशानी का शिकार हो जाती है, जैसे चरवाहे बहुत ही डर गए थे। आज भी अगर किसी को आसमानी मखलूक दोपहर के वक्त किसी खेत या बाग में मिल जाए, तो जरूर सरासीमा हो जाएगा। لیکن وہ جو خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، فرشتگان ان کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ بیت الحم کی کہانی لازوال کہانی ہے۔ اس کی اتھا میں خدا کی حکمت اور علم اور دولت پوشیدہ ہے۔ رومیو 33:11، ہم مسیح خداوند کی اس قربانی پر حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کس طرح آسمانی تخت کے عوض چرنی کو قبول کر لیا اور فرشتوں کی حمد و ثنا کی جگہ استبل کے جانور۔ مگر خداوند کو پسند آیا کہ وہ بشریت کا جامہ پہن لے۔ ہزاروں سالوں سے انسانیت گناہ کی چکی میں پس رہی تھی، پس اس نے ہر انسانی بچے کے گناہ کے نتائج کو قبول کر لیا جو انہیں بزرگ آدم سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ ہمارے غموں اور آزمائشوں میں شریک ہونے اور ہمیں اپنی بے گناہ زندگی کا نمونہ دینے کے لیے اس دھرتی پر آیا۔ ابلیس نے آسمان پر مسیح کے مرتبہ کو حسد اور نفرت سے دیکھا تھا، اور جب ابلیس کو بالکل بے دخل کر دیا گیا تو اس وقت اس کی نفرت مسیح کے لیے اور بھی بڑھ گئی، جس نے گناہگار نسل کو مخلصی بخشنے کا عہد کر لیا تھا۔ تاہم خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس پر ابلیس اپنی سلطنت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا بچہ بن کر آیا۔ خدا نے اسے عام انسانوں کی طرح آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں ابدی ناکامی اور نقصان کا بھی خدشہ شامل تھا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے دے دیا تاکہ وہ ہمارے بچوں کے لیے زندگی کی راہ تیار کرے۔ خدا کی ایسی محبت پر آسمان اور زمین حیرت کناں ہیں۔